आप करो जी।
अच्छा प्रिय भक्तों, बहनों, भाइयों, साधकों तथा सब ख्यालम आश्रम के सदस्य, आज मैं आपको श्रीमद भगवद गीता के 3rd अध्याय का 13वां श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ। सर्वता पाणि पादम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। देव परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित। मैं थोड़ा पीछे की ओर आई थी, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। श्लोक 14। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्व ये गुणम गुण भोक्ति से। ये परमात्मा पूर्ण इंद्रियों से रहित है, वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। आसक्ति रहित है, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित है, संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। एक परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते हैं, वह परमात्मा से भी नहीं है, सबसे रहित भी नहीं है और सबके सहित भी नहीं है। इस श्लोक में समग्र परमात्मा का गैर तत्व के रूप में वर्णन हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि समग्र के मुख्यतः ज्ञान और भूति दोनों में है। श्लोक 15। बह्यंतस्य भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद्विवेकं दुरस्तत्क्यान्तिकेन च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चेहरा चेहर प्राणियों के रूप में भी वही है एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही है। और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। श्लोक 16। अभिक्तम च भूतेषु विविक्त इव च स्थितम् भूतवत्ते च तज्ज्ञेयम् यः शिशु प्रभु विष्णु च। परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्ति तथा स्थित है और वे जाने वाले परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भी है, उनका भरण पोषण करने वाले भी है और साथ में संहार विनाश करने वाले भी है। जैसे संसार भौतिक नीचे से एक है, ऐसे ही परमात्मा भी एक है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक अनेक वस्तुओं व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो होने से असत आ जाएगा, इसलिए परमात्मा एक ही है। दिखता है बहु रूपों में, एक अवसर दूसरा बहुधा बदलती। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है, उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है और जिनका भरण पोषण होता है वह भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा है और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है। इनने अच्छा दर्शन दिया कि सब कुछ परमात्मा ही है। श्लोक 17। ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञानगम्यम हृदय सदस्यम। के परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की ज्योति और ज्ञान से तन परे चले गए हैं। ये ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विराजमान है। ये बात सुननी होगी हमें कि परमात्मा सबके हृदय में है। ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है, शब्द का प्रशासक प्रकाशक कान है, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, रूप का प्रकाशक नेत्र है, रस का प्रकाशक जीवा है, गंध का प्रकाशक नासिका है। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है, मन का प्रकाशक बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाशक स्वयं आत्मा है, स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है, स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। बहुत अच्छा दर्शन यहाँ हमें मिला है कि हम देखेंगे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। तो शब्द जो आकाश से पैदा होता है उसको कौन लाइट प्रकाश में लाता है, कैसे पता चलता? वो कान से, अगर कान नहीं है तो शब्द नहीं सुने जाएंगे। और स्पर्श का प्रकाश जैसे त्वचा है, अगर चमड़ी नहीं है, त्वचा नहीं है तो हमें अनुभूति नहीं होगी कि हमें किसी ने छुआ। और रूप का प्रकाश नेत्र है, हम देखते हैं अपनी आँखों से, होखना सुंदर है। रस का प्रकाश जीव है, जीव से हमें रस का पता लगता है। गंध का प्रकाश नासिका है। ये पांचों इंद्रियां जो है ज्ञान इंद्रियां कहलाई जाती हैं, लेकिन इनका प्रकाश आगे कहते हैं वो मन है, और मन का प्रकाशक आगे बुद्धि है, और बुद्धि का प्रकाशक आगे हमारी आत्मा है। और आत्मा को भी कौन प्रकाशित करता है? परमात्मा। जैसे सूर्य अंधकार कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परम प्रकाश परमात्मा में ज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। 18वां श्लोक, इति क्षेत्रम तो तथा ज्ञान ये मुचोक्तम समासता मद भक्ता ये तद विज्ञाए मद भावायोपद्दृष्टे। इस क्षेत्र तथा ज्ञान ये क्वेश्चन सेव से कहा किया है, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जो इस भाव को समझ जाता है वो साधक भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा भाव? यह क्षेत्र का समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से ही हो सकता है, इसलिए साधु को भक्त होना चाहिए। क्षेत्र को तत्व से जाने पर क्षेत्र से स्वर्ण विच्छेद हो जाता है। ज्ञान साधन समुदाय के तत्व से जाने पर देह अभिमान मिट जाता है। और जो देह है, देह मतलब जिसको जानना है, जो हमारा लक्ष्य है, अगर उसको जाने तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से साधन न होना, अर्थात ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सच्चित आनंद रूप होना आवश्यक है। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्ति भगवान के साथ आत्मीयता, अर्थात मैं और मेरा भगवान एक ही है। श्लोक 19, तत्किं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव बुद्धि प्रति संभवान्। श्लोक 20, कार्यकर्म कर्तृत्व हेतु व्यक्ति उच्यते दोष सुख दुखानां भुक्तित्व हेतु उच्यते। व्यक्ति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। व्यक्ति तो आप जानगे ना, और पुरुष क्या? और विकारों को तथा गुणों को व्यक्ति से ही उत्पन्न समझो। तो जितने भी अच्छा और बुरा है किससे पैदा होता है? व्यक्ति से। कार्य और कर्म के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में व्यक्ति हेतु कही जाती है, मतलब कारण कौन बनती है? कुदरत। और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। भगवान क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का ही प्रत्येक पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। जो क्षेत्र क्षेत्र बताया था ना, उसी को फिर क्या बताया कि जो क्षेत्र है वो प्रकृति है, और क्षेत्र कौन है? वो पुरुष है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में, आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रत्येक पुरुष अनादि है, ऐसे इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखो, ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है। विकृति मात्र जड़ से होती है, चेतन में नहीं। में जो सुख दुख होता है वो जड़ में होता है, आत्मा में नहीं, परमात्मा में नहीं। बस में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है। चेतन कौन है? आत्मा परमात्मा। तो जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है ना, धर्म नहीं है लेकिन स्वभाव है। क्या? जब हमें सुख और दुख मिलता है तो हम उसमें सुखी और दुखी होते हैं, हमारी आत्मा उसमें लिप्त हो जाती है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्येक तो सुख का दुख का नीति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। ये मानना मात्र है कि आदमी बड़ी दुखी कहते है ना, क्या करूँ आदमी बड़ी दुखी, कोई कहते आदमी बड़ी खुश हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ। चेतन में एक दूसरे से सुख दुख रूप दो भाव ही कैसे हो सकती है? लेकिन असल में देखा जाए तो आत्मा ना सुखी है ना दुखी है। जो भाव परिवर्तनशील प्रति नहीं हो सकते हैं, सुख और दुख कहते हैं ये जो चेंजेबल मतलब जो परिवर्तन जिसमें होता है कुदरत में नहीं होता, कभी कुछ कभी पतझड़ कभी फल, जो अपरिवर्तनशील है उसके दो भाव का रूप नहीं हो सकते। लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा जो है उनमें दो भाव नहीं होते, क्योंकि संपूर्ण विकार जो है वो परिवर्तनशील नहीं हो सकते हैं। और परिवर्तनशील कौन है? प्रकृति, ना कि चेतन स्वयं। चेतन स्वयं जीव का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संकेत विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। मतलब जैसे अपने को देखो कि हम आत्मा है, शुद्ध बोध आत्मा है, परमात्मा के अंश है, लेकिन हमने इसको दुख से जुड़ कर अपने को क्या मान लिया? कभी सुखी कभी दुखी। भगवान शक्तिमान है, व्यक्ति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है, पर शक्तिमान जीव का त्यों रहता है। संतो भक्ति की दृष्टि से देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते, अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है न शांत, प्रत्युत अनादि कह दिया है। प्रकृति को भी भगवान ने क्या कहा? अनंत नहीं कहा, जैसे अपने को कहा मैं अनंत हूँ शांत हूँ, प्रकृति को क्या कहा? ये अनादि है, ये शुरू से। कारण की यदि प्रकृति को अनंत कहते हैं तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता है ही नहीं, न सतो विद्यते भाव। यदि प्रकृति को शांत अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भगवान की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति ही मानी जाती है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है, परमात्मा में कोई शक्ति ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। यदि परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशी देशी सीमित ही सिद्ध होंगे, उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो ही सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता है। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति के रहने का स्थान कहाँ होगा? इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। श्लोक 21। पुरुषा प्रकृत हो ही मुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सद सद्यो निज नमसु। प्रकृति में अर्थात पुरुष, प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग इसके ऊंच नीच होने में जन्म लेने का कारण बनता है। हमारा जन्म जो है जीव का, वो जैसा जैसा हम संग करते हैं वो ऊंच ऊंचा या नीचा, उसी के मुताबिक हमें अगला जन्म मिलता है। मैं जड़ प्रकृति है, वो हूँ चेतन पुरुष है, मैं हूँ ये जड़ चेतन का तादात्म्य है, इसमें मैं हूँ यही कर्तापन तथा भोक्तापन, जैसे हम बोलते हैं मैं हूँ मेरा नाम ही है, मैं ये करता हूँ, ये सब कुदरत के अंतर्गत आता है। यदि साधक मैं को मिटा दे तो क्या होगा? मैं हूँ ही रहेगा, पितृ रहेगा है, जैसे लोग अग्नि में पादत्तम में नाम रहने से लोह किसी पर ही रह जाता है और अग्नि में आकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही में अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है। वो हूँ है कसूर होने से है, मैं ही विलीन हो जाता है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दो बातों की सिद्धि होते ही सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है। तात्पर्य कि मैं जड़ अंश जड़ में और हूँ चेतन अंश चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है, फिर एक है मतलब अपना हूँ जो मैं हूँ, ये जब मिट जाता है तो केवल एक रह जाता है, वो कौन है? वो है परमात्मा। मैं है मैं करता पन वो भोक्ता पन नहीं है, न है मैं करता है न भोक्ता, लेकिन हूँ मैं सब कुछ है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता है, वो ही करता भोक्ता बनता हूँ, है करता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को ना मानकर है को ही माने और अनुभव करे। बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो मैं करते रहते हैं वो ना करके भगवान को ही माने। सत्य रज और तम ये तीन गुण है, ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव शुद्ध गति मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। जैसे अगर हम ज्ञान से देखें तो तीनों गुण जो है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये हमें कोई नुकसान नहीं देते, लेकिन जब हम इनमें फंस जाते हैं तो हमारी भी अधोगति होती है। अगर हम सत्व से मिले तो फिर हम सत्व सात्विक हो जाएंगे और हमारी अधोगति नहीं होगी, लेकिन यज से मिलेंगे तो मध्य गति होगी और तम से मिलेंगे तो अधोगति नहीं जाता है। सत्व से मिलने से उधर गति होती है, ऊपर की हो जाते हैं, राज्य से मिलने से मध्य गति और तम से मिलिए तमोगुणी हो गए तो पतनी हो जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है, असंगता जीव का स्वरूप है। उपनिषद में वेदारण्यक उपनिषद में कहा गया है यह संगो हम पुरुषा, मैं पुरुष असंग हूँ, मैं किसी गुण से नहीं मिलता जुलता। अगर जीव गुणों का संग न करे तो जन्म हो ही नहीं सकता, तो हम परमात्मा ही बन जाएंगे। तुम ही जानत तुम ही हो जाए। श्लोक 22 उपदृष्टानुमता चा भक्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चाकृतो देह अस्मिन् पुरुषा अपराम। ये पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपदृष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाले से भक्ता, उसके संग से सुख दुख भोगों से भोगता, अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से ये पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। ये भी आपको समझ आ गई, ऐसे तो परमात्मा ही है सब कुछ, लेकिन जब हम अपने को शरीर से संबंध रख लेते हैं, किसी को सम्मति देते हैं अनुमति देते हैं तो हम अनुमंता बन जाते हैं, और जब हम भरण पोषण करने का इनकार करते हैं तो हम भक्ता बन जाते हैं, वो अपने को स्वामी मान लेते हैं तो हम ईश्वर बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि परमात्मा तो नहीं लेता, लेकिन हम गुणों के साथ मिलकर के भक्ता भोक्ता बन जाते हैं। वास्तव में पुरुष चेतन ही है, पर अन्य के सोन से दृष्टा अनुमंतारी बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के सुबंध से पिता बन गया है तो वो एक ही आदमी, पिता के सुबंध से पुत्र बन गया, पत्नी के सुबंध से पति बन गया, बहन के सुबंध से भाई बन गया। ये सुबंध अपने पिता का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। यहाँ उपदृष्टान मंत्र अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि हम हमारे पीछे एकता है, हम एक हैं। चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। श्लोक 23 या एवं वेति पुरुषम प्रत्यंच गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि नाथ भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित व्यक्ति को जो मुझे अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, ये विदेह बन जाते हैं। सुनो कहां तो वो सब कुछ कहते हैं, गुणों का साथ ही मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर गुणों का जन्म नहीं होता क्योंकि उनको वो सर दोष नहीं लगता है, वो संग रहते हैं हमेशा। अपने को देश सर्वथा असंग अनुभव करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए मैं अपना नाम भी अपने देह को अपना नहीं मानना। क्या मानना? अपने को आत्मा। जो असंग अनुभव कर लेता है वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य करते हुए भी, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप बोलेंगे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो बताते हैं गीताकार कि आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आश्रम के हो, आश्रम मतलब ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, वर्ण का मतलब जाति, लेकिन जब आप अपने कर्तव्यों को जो आपको संसार में मिले हैं संतान के प्रति, माँ बाप के प्रति या और भी, अगर कोई अध्यापक है तो बच्चों के प्रति, कोई देशभक्त है तो राष्ट्र के प्रति, जो जो अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता। मतलब ऐसा मनुष्य का तो हवे करता है वो करता रहेगा, फिर भी वो गुणों में सत्व रजत तमो तीन प्रकार के जो गुण हैं इनमें नहीं बनता। और मैं श्रीमद भगवद गीता के 3 अध्याय के 23 श्लोक से समापन करती हूँ और कल मैं 24वां श्लोक पढ़कर आपको सुनाऊंगी। आप ऐसे करना सब कि जहाँ समझ नहीं आती है उसको समझने के लिए श्रीमद भगवत गीता का वो ही अध्याय, वो ही श्लोक घर में बैठ कर निकालें, उस श्लोक को पढ़ें एकांत में, फिर उस पर विचार करें, मनन करें, तो आपको वो अवश्य जो तात्पर्य है गीताकार का समझ आ जाएगा। अब मैं आपको श्री महाराज स्वामी जी की विषय में एक पुस्तक जो ले श्री अमर सूद जी ने लिखी है उसके कुछ प्रसंग अभी हमारे पास शेष है, उनको पढ़कर सुनाती हूँ। कल शायद हमने ये किया था कि आत्मा 5 चिमनियों के भीतर है। आत्मा एक चमकता हुआ सितारा समझो, और इसको इतना ब्राइट समझो जैसे सन होता है सूर्य, लेकिन ये सूर्य का जो लिमिनस है, जो प्रकाश है, वो क्यों छिप गया है? वो डिजायर्स इच्छाएं हम आगे उस प्रकाश को ढक देती है। आज इच्छा की ये खाना है, कल इच्छा की वो खाना है, आज ऐसे कपड़े पहनने, कल वैसे पहनने, वहाँ जाना, वहाँ करना, इन सब में हमारी जीव आत्मा उलझी रहती है। इसलिए हमें वो सूर्य का प्रकाश जो यूनिवर्सल है, द शाइनिंग वन ऑफ द यूनिवर्सल लाइट, द प्योर इंटेलिजेंस नो एंड द नॉलेज एब्सोल्यूट, उसको हम नहीं देख पाते, न समझ पाते, न मनन करते हैं। इसलिए सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, इच्छा दुखों का घर है, इच्छा को ही हमें खत्म करना है। किसी प्रकार की डिजायर हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। केवल क्या है कि ठीक है, खाना भी है, भोजन भी है, वस्त्र भी चाहिए, वो होती आवश्यकता जो हमें डेली नीड्स है, जो हमारी रोजाना की दैनिक आवश्यकताएं हैं, वो तो आवश्यक है। लेकिन स्पाइट ऑफ दैट, उनके बावजूद जब हम चाहना करते हैं कि हमें वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो बन जाती इच्छा, डिजायर। और उन डिजायर के कारण, उन इच्छाओं के कारण हम अपने आत्मा का प्रकाश नहीं देख सकते हैं। रामलाल जी लिखते हैं, स्वामी जी गेव एन एग्जाम्पल एंड सेड, सपोज वन कॉस्मिक लाइट, रिस्प्लेंडेंट लाइट इज कवर्ड बाय द चिमनीज। स्वामी जी ने कहा, रामलाल सुनो, अगर जो गम का प्रकाश है वो पांच चिमनियों से ढक गया है। द आउटरमोस्ट चिमनी इज मेड ऑफ क्ले, जो सबसे पहले चिमनी लगी है उस प्रकाश के, वो है क्ले की, मिट्टी की, स्टोन की, पत्थर की। से इट इज एन अर्दन चिमनी, ये पार्थिव चिमनी है, पृथ्वी की चिमनी है। देन देयर इज ए बाटली चिमनी, जल की चिमनी है। और फिर उसके बाद अग्नि की चिमनी है। एंड देन इट इज सराउंडेड बाय एयर, और फिर इसके बाद हवा की चिमनी है। एंड देन इट इज सराउंडेड बाय द चिमनी ऑफ स्पेस, आकाश की चिमनी है। एंड द लाइट इज शाइनिंग इन द स्पेस इटसेल्फ, जबकि वो प्रकाश जो है वो चमक रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता, अनुभूति नहीं होती। दे आर सीटिंग आउटसाइड द अबव मेंशन्ड फाइव चिमनीज। स्वामी जी ने कहा कि आप देखिए कि हम कहाँ बैठे हैं, इन पांच चिमनियों के परे बैठे हैं। वी आर अंडर द इल्यूजन ऑफ माया, और हम माया के उसमें भ्रम में पड़ गए हैं। एंड वांट टू सी द लाइट ऑफ आत्मा, तो फिर क्या देखना चाहते हैं, आत्मा का प्रकाश या द सेल्फ, मतलब अपना। आई सेड स्वामी जी काइंडली एलेबोरेट, आई डोंट अंडरस्टैंड योर सिंबोलाइजिंग, इट इज वेरी सबलाइम। फिर रामलाल जी कहते हैं कि मैंने कहा स्वामी जी आप प्लीज ऐसा करो कि एलेबोरेट का वर्णन करो, मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया। जो आपने उदाहरण दिया, सिंबोलिज्म किया, उसकी मुझे अभी व्याख्या समझ नहीं आई, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म है, सबलाइन है। स्वामी जी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड सेड, स्वामी जी हंसे और कहा, देन अंडरस्टैंड लाइक दिस दैट द आउटर मोस्ट चिमनी इज मेड ऑफ हर्ट। अब उन्होंने उस बात को और ज्यादा क्लियर किया। स्वामी जी ने ये पांच तत्व को बता रहे हैं स्वामी जी कि सबसे पहली चिमनी जो लगी है, जो बाहर है, वो है पृथ्वी की। ये जो पृथ्वी कहते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व, फाइव एलिमेंट्स हैं जिनसे हम बने हुए हैं। और इनके इस पांच तत्वों के भीतर हमारी आत्मा विराजमान है, तभी हम चलते फिरते खाते पीते सोते हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, देन अंडरस्टैंड लाइक दिस दैट आउटर मोस्ट चिमनी इज मेड ऑफ अर्थ, पृथ्वी तत्व है, द पृथ्वी तत्व, एंड ऑल द ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड इज मेड ऑफ पृथ्वी तत्व। और साथ में स्वामी जी ने क्या बताया, ये बताया कि संसार में जितनी भी धन दौलत है पृथ्वी तत्व से आता है। Whether it is gold, diamond or precious jewels, चाहे वो सोना है, चाहे वो हीरे हैं, या बड़े कीमती वो हीरे ज्वाहरात हैं, वो सब पृथ्वी तत्व से ही बनते हैं। The desire for achieving wealth or greed which is called lobha is made of पृथ्वी तत्व। तो क्या बताते हैं, बड़ी समझने की बात है कि the desire for achieving wealth, ये इच्छा कि मेरे बहुत धन प्राप्त हो जाए, ये लोभ है, ग्रीड है, विच इज कॉल्ड लोबा इज मेड ऑफ पवित्र, किससे बने हैं? पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व से क्या बना? लोभ। लोभ कहते हैं ना आम भाषा में, हम कहते हैं इसको बड़ा लोभ है, बड़ा लालच है। तो जब हम धन का लालच करते हैं तो क्या होता है कि वो चिमनी हमारी बड़ी ही थिक होती है, घनी होती है। पृथ्वी तत्व है ना, वो बहुत घना होता है। अच्छा, द डिजायर फॉर अचीविंग वेल्थ और ग्रीड विच इज कॉल्ड लोबा इज मेड ऑफ पृथ्वी तत्व। सो द डिजायर फॉर वेल्थ द ग्रीड द लोबा इज द मोस्ट अपर्टिव चिमनी सराउंडिंग द लाइट ऑफ आत्मा। इसलिए पृथ्वी तत्व ये जो चिमनी है, इससे जो लोभ पैदा होता है धन के लिए, लालच होता है, ये बहुत ही ऐसी चिमनी है जो कि आत्मा की लाइफ को, आत्मा के प्रकाश को उसे घने रूप में झेल लेती है। जैसे तो हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है जब तक तो हमारे भीतर लोभ है। इट इज द थिकेस्ट व्हील ऑन द लाइट ऑफ द सेल्फ। और क्लियर करते हैं स्वामी जी महाराज, कहते हैं रामलाल सुनो कि जो हमारे भीतर लाइट है, प्रकाश है, सेल्फ है, आत्मा है, उसके चारों ओर जो चिमनी है, ये पहली चिमनी कौन सी चिमनी है? पृथ्वी तत्व की है। और ये थिकेस्ट है, बहुत ही घनी है। As long as we are not contented, as long as we don't give up all the desires to acquire the worldly wealth, we can't have even a glimpse of the eternal light of Atma or the bliss of self-realization. बड़ी भारी बात समझने की है, समझने के बाद अपनाने की है, प्रैक्टिकल करने की है। क्या कहते हैं स्वामी जी, एज लॉन्ग जब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं, एज लॉन्ग एज वी डोंट गिव अप, और जब तक हम ये सारी इच्छाएं जो दुनिया के धन को पाने की है समाप्त नहीं करते, छोड़ते नहीं है जीव, वी कांट हैव इवन ए ग्लिम्स, तब तक हमें जो इटर्नल सनातन प्रकाश आत्मा का वो नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रकाश के उसका ग्लिम्स हैव इवन ए ग्लिम्स, थोड़ा सा भी प्रकाश हमें नहीं दिखाई देगा। और द ब्लिस ऑफ सेल्फ, दूसरे शब्दों में कह लो कि आत्म अनुभूति नहीं होगी। ये प्रथम चिमनी पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व से मनुष्य को क्या आता है? लोभ। क्योंकि पृथ्वी ही हमें हीरे ज्वाहरात और सब प्रकार की अनेक वस्तुएं दिखती है, और उसी में हमारी जीव आत्मा जो है लालच में फंस जाता है। और जब तक वो इस लालच में फंसा है तब तक हमें अपना आत्मदर्शन हो ही नहीं सकता। When you enunciate all your desires for the worldly wealth, then you cast aside the lobha, then you cast aside the lobha, the outermost and the thickest chimney of heart, the prithvi tattva is broken. क्या कहते हैं स्वामी जी? कहते हैं रामलाल सुनो, क्या दोगे जब तुम दुनिया के धन दौलत की इच्छाओं को गिव अप छोड़ देंगे? तो ये लोभ को एक साइड रख देंगे, तो जो ये थिकेस्ट पृथ्वी तत्व की जो सबसे घनी चिमनी है ये टूट जाती है। अब वो टूट जाती है जब हम ये करते हैं, डिजायर को छोड़ देते हैं, तो पृथ्वी तत्व की चिमनी जो है वो अपने आप ही टूट जाएगी, तोड़नी नहीं पड़ेगी। यू कैन हैव अ स्मॉल ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ब्लिस, तब आपको थोड़ी सी रोशनी दिखाई देगी, लाइट इन द आत्मा, आत्मा में, द सेल्फ अपने में। बॉन्ड जो पृथ्वी तत्व देन कास्ट एसाइड, जब हमें थोड़ा सा आत्म प्रकाश अपनी आत्मा में दिखाई दे तो समझो कि पृथ्वी तत्व जो है वो हमने कास्ट एसाइड एक साइड कर दिया है। और आगे चलिए, आगे स्वामी जी कुंडलनी के विषय में कहते हैं, तीन कुंडलनी योगा मूलाधारा चक्र एट द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज द सीट ऑफ कुंडलनी एंड पृथ्वी तत्व। अब आप बोलेंगे कि बड़े बड़े योगी कुंडलनी शक्ति के बारे में जानते हैं और बताते हैं और कुंडलनी को जागृत करते हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ रामदास जी को बड़े साधे शब्दों में बता दिया एक योग कुंडलनी योग होता है। इसमें क्या होता है कि मूलाधार में एक चक्कर होता है, ये एट द बेस ऑफ स्पाइनल हमारी पीठ में एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसके नीचे जब हम बैठते हैं तो वो कुंडलनी होती है, कुंडलनी है। एंड पृथ्वी तत्व भी वही है, बाय कॉन्करिंग द पृथ्वी तत्व और लोवा द कुंडलनी गेट्स ए बूस्ट एंड बिगिंस टू राइज। देखिए जब हम लोग लालच छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारी कुंडलनी जागृत हो जाएगी थोड़ी सी, ऐसे नहीं खेलने जुड़ने लगेगी। कहते हैं कुंडलनी जो है सांप की भांति कुंडली मार के बैठी हुई है चुपचाप। जब हम संसार के लोभ लालच को छोड़ देते हैं तो वो कुंडली पुट्टी अपने इसमें आने लगता है। क्या आने लगता है, शक्ति। द डोरमेंट स्टेट ऑफ कुंडली एंड्स एंड देयर कम्स अ मोमेंट इन इट। तो क्या होता है कि कुंडली के जो चक्कर है वो खुलता है, वो उसमें मूवमेंट आती है, हिलना जुलना शुरू हो जाता है कुंडली का। इट इज बिलीव दैट ऑल ऑफ आवर सुपर नेचुरल पावर्स आर लाइंग डोरमेंट इन द फॉर्म ऑफ कुंडली। हमारी जितनी भी सुपर नेचुरल आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो कुंडली में ही छिपी पड़ी है, एट द मूलाधारा, मूलाधारा में जहाँ कुंडली है वहीं पर हमारी सब प्रकार की शक्तियाँ हैं। द फर्स्ट चक्र विच नीड्स टू बी अवेकन बाई प्राणायाम एंड मेडिटेशन। और ये जो फर्स्ट चक्र है, प्रथम चक्र जो होता है कुंडली के पास, वो जब जागृत होता है उसको जागृत करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है और ध्यान की आवश्यकता है। और यही प्राणायाम और ध्यान जब हम करते हैं तो इसको क्रिया योग कहते हैं। कितने कई साधु संत क्रिया योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं। क्रिया योग क्या है, ये है कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना, जागृत करना उसको बाई प्राणायाम और मेडिटेशन। When it is awakened, जब एक कुंडली जाग जाती है, it becomes an embodiment of cosmic light and energy, playing field, cosmic brahmi, brahmi, प्रकाश और शक्ति के रूप में आती है। मूलाधार जासो कार पेल्विक प्लेक्सस, मूलाधार जो है उसको पेल्विक प्लेक्स कहा जाता है। मेडिटेशन ऑन दिस चक्र लाइन गुड हेल्थ कैपेबिलिटी ब्रिलियंस एंड एमिनेंस इन लाइफ। जब ये चक्र, जब इस चक्र पर हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि सेहत भी ठीक रहती है और हम ब्रिलियंट होते हैं, जल्दी हमें कोई भी बात समझ आ जाती है और हम जीवन में एक अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। तो आज मैंने आपको इस छोटी सी बुकलेट में से श्री महाराज जी के वचन सुनाए कि किस प्रकार योग क्या है, कुंडलनी योग क्या है, इसको कैसे कुंडलनी को जागृत किया जाता है। पांच चिमनियां बताई, आज हमने केवल पहली चिमनी पर ही प्रकाश डाला, जिसको पढ़ा और आपको सुनाया कि स्वामी जी ने कहा है कि क्रिया योग इसी में सम्मिलित है। तो ये आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को सुनो, समझो और करो। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय माता दी।